और अब क्या है, फरमाया काला फमा खतबुकुम या सामरी, ए सामरी तेरा क्या माजरा है। अब मूसा अलैहि सलाम उससे पूछ रहे, काला बसुरतु बीमा लम यबसुरु बिही, उसने कहा मुझे वो चीज समझ में आई जो इनको नहीं समझ आई थी। फकबतु कब्दतन मिन अथर रसूल, तो मैंने मुट्ठी भर ली एक मुट्ठी रसूल के नक्शे कदम पे से। फनबस्तुहा, तो मैंने डाल दिया उसको उस पे बछड़े पे। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको बताऊं कि उसने कहा जी मुझे तो जो समझ में आया मैंने वो किया, ये इनको ये बात नहीं समझ आई जो मुझे इतनी गहरी बात समझ आ गई, वो ये कि बास तफसीरों में लिखा हुआ है वल्लाहु आलम कि उसने कहा कि जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पे सवार थे और वो समंदर फटा था और वो जा रहे थे, तो उनके घोड़े के जो पैर जहां पे पड़ते थे वहां की जो मिट्टी थी वो मैंने उठा ली थी, क्योंकि वो मिट्टी जहां पे पैर डालता था घोड़ा वहां उसकी मिट्टी पे सब्जा उगाता था, तो उसने सोचा ये कोई मिरेकल ही मिट्टी है। उसने वो उठा ली और बछड़े पे डाली और बछड़ा बोलने लगा और ऐसे, हालांकि वो उसमें से यहाँ पे पता चलता है कि उसके अंदर से एक गाय की सी आवाज आ रही थी, कोई ऐसे नहीं था कि वो जिंदा बछड़ा हो गया हो, वल्लाहु आलम। मगर असल बात ये पता चलती है कि रसूल जो उसने जो कहा कि वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को वो कह रहा है, मगर हदीस से ऐसी बात कहीं आती नहीं है कि ये था। ये हो सकता है कि मूसा अलैहिस्सलाम की जो तालीमात हैं उनमें से कोई चीज इसने ली और इसने कहा कि बार क्या भी उसका कलाम है उसकी बात है, और ये इसको ऑथेंटिक नहीं कहा गया कि ऐसा ही हुआ था, उसने उनकी तालीमात में जो आपने पीछे छोड़ा था उसमें से कोई बात समझी और उसने कहा कि मैंने तो यही समझा और मैंने ये असर रसूल में से ही लिया, यानी रसूल की तालीमात में से ही लिया, मैंने इसको ही कब्जे में किया और फिर मैंने वो ही डाल दी, वही बातों से मैंने ये बछड़ा बनाया, और वकदाली का सब वलतली नफसी, और इसी को मेरे नफ्स ने मेरे लिए आसान कर दी। तो वो पहली बात भी मैंने आपको बता दी जो तफसीरों में लिखी हुई, और ये भी तो वो बड़ा शातिर आदमी था ना, तो उसने कहा कि किसी और को तो इतनी बात समझ नहीं आई जो मुझे समझ आ गई और मैंने ऐसे किया और ये ऐसे हो गया, जो इस तरह के लोगों को उल्टी तरफ ले जाने वाले शातिर लीडर होते हैं फिर वो ऐसी बातें करते हैं। इंसान ना इसीलिए गुमराह भी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो लीडर होते हैं या बहुत सारे जो इमाम होते हैं, बहुत सारे जो गलत करने वाले होते हैं, वो यही करके कहते हैं नहीं जी हमें तो ये बात समझ आ रही है। उसमें देखना चाहिए फिर कि कुरान से ये बात साबित होती है, सही हदीस से साबित होती है, तो फिर तो ठीक है, वरना ऐसे ही कोई आपको अपने पास से काम इजाद करके कह दे कि जी मुझे तो यही समझ आई, तो ये इसको दीन नहीं समझना चाहिए फिर, ठीक है। قال فذهب, तो मूसा अलैहि सलाम ने अब उसके लिए एक सजा तजवीज की, फरमाया मूसा अलैहि सलाम ने, पास जा तू, फइन्ना लका फिल हयाती, तो तेरे लिए है जिंदगी में, जिंदगी कौन सी, दुनिया की जिंदगी में, अंतकूला ला मिसास, के तू सारी जिंदगी अब कहता रहेगा ना मुझे छूना ना मुझे छूना। इसको ऐसी एक बीमारी लग गई थी, कहते हैं लेप्रसी की थी, जजाम की बीमारी हो गई थी या क्या था, कि जो अगर इसको कोई छू लेता था टच कर देता था तो इसकी बीमारी और बढ़ जाती थी। अल्लाह अकबर, ये ना छोटी बात नहीं होती कि खुद भी गलत रास्ते पे होना और अपने पीछे लोगों को भी लगा लेना कि आ जाओ दो। और वो एक बंदा फितना उठाता है और बाकी लोग अपनी अकल जो है ना एक साइड पे रख के बस भागते जाते हैं उसके पीछे। वा इन्ना लका मौइदन लन तुखलफहु, ए और बाकी ये तो दुनिया की जिंदगी की सजा थी और एक वादे का वक्त तो मुकर्र ही है, इसके खिलाफ नहीं किया जाएगा, इसको पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, उसके यानी उसके अगेंस्ट नहीं होगा, क्योंकि कयामत के दिन यानी उस दिन का जो उस दिन की जो सजा है वो तो मिलके ही रहेगी, ये तो दुनिया की सजा है, वो अलग है आखिरत की सजा। वंजुर इला इलाही का, और देख अपने इला की तरफ जिसको तू कहता था ना ये इला है, अल्लजी जलता अलैहि आकिफन, जिसके ऊपर तू रहा बैठा रहा मोतकिब बन के, उसके आगे पुजारी बन के बैठा रहा। लानो हर कन्नहू, अलबत्ता हम जरूर जला डालेंगे इसको, सुम्मा लनंसी फन्नहू, फिर हम इसको जरूर फेंक देंगे, फिर यम समंदर में, नसफन फेंक देना, ये भी ताकीद के लिए आया, और फिर मूसा अलैहि सलाम ने ये हकीकत लोगों को दिखाने के लिए कि ये देखो इसका हाल क्या होता है, उन्होंने उस बछड़े को जला के, कहा जाता है कि वो जाहिर है जला के तो उसके साथ मट्टी और पत्थर भी थे, और उसके बाद वो जो बिल्कुल मेल्ट होके सख्त हो गया तो उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको समंदर में बहा दिया। इसलिए कि जो शिर्क की जो याद होती है ना उसको भी मिटा देना चाहिए। जब भी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फुतुहात की तो हजरत खालिद बिन वलीद को भी भेजा था और हजरत अली को भी, और उनको, कि जो भी ऐसी चीजें हैं जहां पे कोई बुत पूजे जाते या जहां पे कोई अल्लाह के सिवा जिसकी भी इबादत की जाती थी, उन सारी निशानियों को भी मिटा दो। तो बुतों को तोड़ दिया गया, गिरा दिया गया, ऊंची कब्रों को भी फ्लैट कर दिया गया कि लोग इन चीजों की पूजा ना करें। इसीलिए आपको पता है हजरत उमर ने जो इस दरख्त के नीचे बैत रिजवान हुई थी और लोग उसके नीचे जा जाके जरा बहुत ही अकीदत करना शुरू कर दिए थे, तो उनको ये डर हुआ कि कहीं लोग इसकी पूजा ही ना शुरू कर दें दरख्त की, इनका क्या पता, तो उन्होंने उस दरख्त को कटवा दिया था। तो ऐसी जो कोई कहीं पे भी शिर्क का शायबा भी हो सकता है, इस्लाम उसको भी, ये नहीं कि आप अब उसको पूजने लगेंगे, मगर कभी हो सकता है ना, क्योंकि नूह अलैहि सलाम की कौम ने भी जो शुरू के अंदर एक अपने प्यारे बुजुर्गों की, नेक लोगों, नेक ही थे वो, बुरे नहीं थे वो, उनकी जो उनकी सूरतें बनाई थी, उनके बुत बनाए थे, तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये हमें कुछ देते हैं, उन्हें कहा था इनको देख के हमें अल्लाह याद आ जाते हैं, अगर हमें ना इतने नेक बुजुर्ग थे इनको देख के देखते रहेंगे हमें अल्लाह याद आएगा, हम फिर नेकियां करेंगे। उन्होंने बड़े अच्छे जज्बे से ही तो शैतान शुरू कराता है, ऐसे तो नहीं कहता कि तुमने अब शिर्क शुरू करना है चलो आ जाओ शिर्क शुरू कर दो, ऐसे नहीं कहता वो। तो उनसे भी ऐसे शुरू करा के और फिर कहाँ तक उनको पहुंचा दिया। इसी तरह लोगों से वो ऐसे काम कराता है, और इसी वजह से हमारी शरीयत में मना है कि आप घरों में बुत रखें, ठीक, कभी किसी किस्म का भी बुत ना रखें, चाहे वो लैंप की सूरत में है, चाहे वो मतलब और डेकोरेशंस वगैरह होती हैं, कोई लोगों ने हाथी रखे होते हैं, कई उन्हें घोड़े रखे होते हैं, कई उन्हें इस तरह की चीजें रखी होती हैं, बड़ी डेकोरेशन है, बड़ी खूबसूरत लग रही, आपको मना किया गया, आप कहते हैं हम इनको पूछते थोड़ी, बेशक आप नहीं पूछते, लेकिन जैसे जिना का फरमाया ना कि जिना के रास्ते पे भी ना जाओ, करीब भी ना जाओ उसके, उसके रास्ते को बंद कर दिया, जिना तो भी आगे होना था, इसी तरह शिर्क के रास्ते को भी बंद कर दिया। वो पता है आगे कंस्ट्रक्शन हो रही हो तो वो पहले सड़क दूर से ही बंद कर देते हैं कि इस सड़क पे नहीं जाना, एंड में थोड़ी आके बंद करते, कोई आगे गड़ा है, कोई आके एक्सीडेंट है, वो पहले से ही बंद की होती, ये रास्ता ही बंद कर दिया। जब हमें मना कर दिया जाता है तो फिर इसका जवाब देने की क्या जरूरत है, नहीं हम तो पूजते नहीं है, नहीं तो उन लोगों के लिए कहा गया, उठा के फेंके ऐसी चीजों को जो कि बुत हैं घर के अंदर रखे, क्यों रखे हम बुत। तो एक हमारे दिल में ना इस चीज की कराहत होनी चाहिए, जो चीजें हमें हमारे दीन ने, हमारी शरीयत ने, हमारे नबी ने बता दी है, इतना तो रिगार्ड करें उनकी बात का, उनकी बात का कोई रिगार्ड नहीं है, मतलब हमें अकलें समझे बहुत ज्यादा, हम तो नहीं करते, तो उनको नहीं पता था कि ये नहीं करते, ये तो मुसलमान है, मुसलमान थोड़ी बुत को पूजेगा, उनको नहीं पता था ये बात, हमें ज्यादा समझ आई है। लेकिन उन्होंने उस जमाने में, उस वक्त तो कोई भी नहीं ऐसे करता था, जो मुसलमान थे वो कहाँ बुत परस्ती करते थे, फिर भी उन्होंने फरमाया नहीं, बुत तो और तस्वीर नहीं होनी चाहिए घर में, ये तस्वीरें लगाना दीवारों के ऊपर और उसको बड़े अपनी खूबसूरती करना, उतार दे उनको। तो इन्नमा इलाहुकुमुल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, बेशक तुम्हारा इलाह अल्लाह है, वो अल्लाह नहीं कोई इलाह उसके सिवा। इलाह का तर्जुमा उर्दू में तो कोई इसका एक वर्ड है ही नहीं, माबूद एक एक माना उसका देता है, मगर इलाह के अंदर तो बहुत सारे माने हैं, वो जो सबसे ताकतवर है, वो जो मालिक है, जो खालिक है, जो मुदब्बिर है, जो सारी ताकतें रखने वाला है, जो हर चीज कर सकता है, वो सारे माने एक इलाह के अंदर आ जाते हैं, कोई इलाह नहीं इल्ला हुआ मगर वो ही है। ये अब मूसा अलैहि सलाम जब उसको समंदर के अंदर बहा रहे हैं तो तब ये कह रहे हैं, और पता नहीं शायद हिंदुओं ने भी इसी चीज से लिया हो, बस कहते हैं कि शायद ये यहूदियों के अंदर से ही, हिंदुओं के अंदर भी ये आई, या उन्हीं के लोग हिंदू फिर धर्म को उन्होंने अपना लिया कि अब वो भी जाके अपने मुर्दों को भी उसमें बहाते हैं गंगा में, और फिर वो अपने बुतों को भी जाके एक दिन बहा देते हैं। तो खैर, तो उन्होंने मूसा अलैहि सलाम ने उस वक्त उनको फिर से तालीम दी, वो जो फाउंडेशन थी ना, जो बुनियाद कमजोर हो गई थी, उस बुनियाद के ऊपर वापस लेकर आए कि तुम्हारा इला तो वो इला है जिसके सिवा कोई और इला नहीं, वस या कुल्ला शैइन इल्मा, उसका इल्म हर चीज पे मुहित है, हर चीज को घेरे हुए है। हमने पहले पढ़ा है ना, तख्त सरा भी कोई चीज हो ना, ये तो गीली जो जहां तक गीलाहट होती है जमीन की, उससे नीचे भी कोई चीज है उसको भी जानता है, आसमानों में कोई चीज है उसको भी जानता है, कोई चीज उससे इल्म से बाहर है ही नहीं, अहाता किया हुआ उसने हर चीज से अपने इल्म से। कदालिक नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाई, इसी तरह हम बयान करते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि 98 आयत तक, पता नहीं मैंने 98 आपको कहा था, 89 तो नहीं बोल दिया, अपने नोट्स में चेक कर लीजिएगा, और मैंने आपको पहले 89 तो नहीं कह दिया था, तो 98 आयत तक, यहाँ तक मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा खत्म हो जाता है, फिर ये थर्ड पार्ट इस सूरत का शुरू हो जाता है। इसी तरह हम बयान करते हैं आप पर खबरें, खबरों में से, सारी खबरें तो नहीं, खबरों में से माँ कद सबक, जो पहले गुजर चुकी, जो पहले वाकयात गुजर चुके हैं वो हम आप पे बयान करते हैं। क्यों? अब ये देखें, मुसलमान जो वहां पे पिस रहे हैं, मुशरिकीन मक्का के मजालिम सह रहे हैं, उनको बड़ी अच्छी तरह समझा दिया गया इस किस्से को बता के कि जिस रब ने बनी इसराइल को फिरौन से निजात दी थी, वही रब तुम्हारी भी निजात का सामान करेगा। और जैसे उनको मुश्किल से निकाला था, मुश्किल हालात से निकाल के अल्लाह ताला ने उनको एक आजाद कौम बना दिया, इसी तरह अल्लाह तुम्हें इनसे आजादी देगा। और ऐसा ही हुआ था, और जिस तरह अल्लाह ताला ने उनकी मदद फरमाई थी, अल्लाह तुम्हारी भी मदद फरमाएगा, तो इसकी फिक्र ना करो। तो अल्लाह ताला इसमें होप दिखाता है इंसान को। मैंने आपको बताया था ना, ये वाली सूरतें वो हैं जो मुश्किलों के अंदर पढ़ते हैं, तो हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हम वो चीज लेते ही नहीं उससे, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही होती। तो ये तो चीज ले इससे कि कैसे अल्लाह ताला, देखो किस तरह आन की आन में एक दुश्मन जिसका कुछ सोच ही नहीं सकता, बनी इसराइल बेचारे क्या मुकाबला उन्होंने करना था, वो तो कोई मैच ही नहीं थे फिरौन के लश्कर का, उन्होंने क्या लड़ना था, वो कभी उन्होंने लड़ के भी नहीं देखा था, वो ने क्या खात्मा करना था अपने दुश्मन का, ये अल्लाह ताला ने देखो कैसे करा दिया, कैसे उनको निजात दे दी। अल्लाह अकबर, वकद आतीना का मिल्लदुन्ना जिक्र, और तहकीक हमने अता किया, हमने दिया आपको अपने पास से एक जिक्र, अपने पास से, जब अल्लाह ताला फरमाते हैं ना तो स्पेशली कोई चीज देने के लिए तरफ बात होती है, स्पेशली एज अ फेवर हमने आपको ये जिक्र दिया। एक जिक्र मतलब कुरान, जिक्र से मतलब यहाँ पे कुरान करीम है, कि हमने आपको अपनी तरफ से ये जिक्र दिया। जिक्र का मतलब रिमाइंडर, नसीहत, याद दिहानी। अच्छा ये बताइए कि हम सबके हाफ़िज़े बहुत तेज है या हम भूलते हैं? सब कहेंगे हम भूलते हैं, है ना, हमें बहुत सारे लोगों को हमें ये शिकायत होती है कि हम भूल जाता है, भूल जाता है। इसीलिए तो कुरान जिक्र है, रिमाइंडर है, क्योंकि अल्लाह को पता है कि हमें भूल जाता है। अल्लाह सुब्हान तआला ने ये कुरान नाजिल किया कि हमें बार बार याद दिलाए। आप देख लें हमें कितनी जल्दी भूल जाता है, अब तो हम ज्यादा ही भूलने वाले हो गए, इंसान वैसे ही सारे इंसान ही भूलने वाले, इसीलिए तो उसको इंसान कहते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, पहले लोगों की बातें पढ़ते थे ना, तो पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो लोग पूरे पूरे जो उनके सामने खुतबा दिया जाता था या शायरी की जाती थी वो सुनते थे और उनको याद हो जाती थी। हमें तो अपनी भी बात नहीं याद रहती कि हमने अभी क्या बात की थी। जैसे वक्त आगे चलता जा रहा है, यूं महसूस होता है कि याददाश्त में और भी कमी आ रही है, और उतनी ही ज्यादा फिर रिमाइंडर की जरूरत होती है। तो ये हमें रिमाइंड कराता है अल्लाह के बारे में, अल्लाह की याद दिलाता है हमें। कुरान जिक्र है, और जिक्र कैसा है? अल्लाह की याद के लिए, जैसे नमाज जिक्र है ना, उसके बारे में भी फरमाया ना कि वो जिक्र है, इसी तरह कुरान भी है। तो याद दिहानी सबको ही चाहिए, इसलिए ज्यादा कुरान की तरफ आना चाहिए। मन आरद अनहु फइन्नहु यहमिलु यौमल कियामति विज़रा, जो कोई इस जिक्र से मुंह मोड़ेगा। तो लोग पूछते हैं कि क्या फर्क पड़ता है इस जिक्र से मुंह मोड़ने से? कुरान को पढ़ना फर्ज तो नहीं है, कुरान को समझना फर्ज तो नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, जो इस जिक्र से मुंह मोड़ेगा कयामत के दिन वो एक बोझ उठाएगा। बोझ उठाना तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता, विजर बहुत भारी बोझ को कहते हैं। कौन है जो कहेगा कि हमें बोझ उठाना। इवन एक औरत प्रेग्नेंट होती है ना, तो वो भी जब अब उसके आखिरी दिन होते हैं तो इतना बोझ होता है उसके ऊपर, लेटना उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। कहती है कब मैं इससे फारिग हो जाऊं, हालांकि अपना बच्चा है। फिर भी आप देखिए सामान कहीं उठा के ले जाना होता है, बंदा कहता है जल्दी से इसको बुक करा दूं। और ये तो गुनाहों का बोझ है, इतना भारी ये बोझ होगा कि इंसान इससे निजात नहीं पा सकेगा। जिसने अपनी जिंदगी, सारी जिंदगी इस जिक्र से दूर, इससे मुंह मोड़ के, एराज क्या होता है? एराज ये नहीं कि उसको पता नहीं है, ये नहीं होता। एराज का मतलब है कि पता है जानबूझ के इग्नोर करना, ये होता है एराज। और आप देखें कि आज कुरान किस घर में नहीं है और किसको नहीं पता कि अल्लाह का कलाम है, इसके बावजूद एराज कितना है। बस नहीं, इसकी तरफ नहीं आना। तो ऐसे लोग जो इस कुरान से एराज करते हैं, एराज में ईमान ना लाना भी है, एराज में अमल ना करना भी है, एराज में इसको अपनी जिंदगी में शामिल ना करना भी। अमल कैसे करेंगे जब पता ही नहीं इसमें है क्या? अमल तो बाद की बात आती है ना, समझना पहले है, सीखना पहले है, इल्म लेना पहले है, ये सीढ़ी है, तब जाके आप अमल पे पहुंचते हैं। तो एराज ये कि जानबूझ के इसको निग्लेक्ट किया। और हमने पढ़ा है कि जो इसको निग्लेक्ट करेगा तो कयामत के दिन अंधा उठाया जाएगा, और वो कहेगा या अल्लाह मैं अंधा क्यों उठाया गया? तो उसे कहा जाएगा कि तुम दुनिया में अल्लाह के जिक्र से अंधे रहे तो अल्लाह ताला भी तुम्हें अब अंधा ही उठाएगा। अल्लाह अकबर। तो यहां पे कहा गया, और आगे भी आएगा इसके बारे में कि कैसे, यही जो मैंने आपको बात बताई अंधा उठाने की, ये इसी सूरत में आएगा। यहाँ पे कहा गया कि भारी बोझ उठा देगा, जो खालिदीना फी, इसी में हमेशा रहने वाले हैं, यानी इसी बोझ को उठाए रखेंगे, उठाए रखेंगे, सारा कयामत का दिन गुजर जाएगा और इनका बोझ नहीं उतरेगा। वसअलहुम यौमल कियामत हिमला, और कितना बुरा बोझ है जो उस दिन उठाएंगे। उस दिन एक मुसीबत पहले होगी अपने हिसाब किताब देने की, प्लस ये बोझ भी उठाया होगा। अस्तग़फिरुल्लाह। और ये यौमल कियामत ही, कियामत के दिन ये बहुत बुरा बोझ होगा। कौन सा कियामत के दिन? यौमा, फिर उसके बारे में बताएगा, युनफखु फिस्सूर, जिस दिन सूर में फूंक दिया जाएगा। सूर क्या है? वो एक जैसे हॉर्न होता है उस तरह से एक चीज है, और एक हदीस में आता है दो सूर फूंके जाएंगे, एक में तीन का भी जिक्र आता है। तो एक में आता है कि एक होगी जिससे एक सूर फूंका जाएगा जिससे लोगों में ऐसे दीवानगी हो जाएगी, हर चीज तबाह होने लगेगी, दूसरा सूर होगा जिसमें लोग सारे मर जाएंगे, तीसरा होगा जिसमें खड़े होंगे, एक और जगह आता है एक में जिसमें खत्म हो जाएंगे, दूसरे में जिसमें उठ जाएंगे। तो ये वाली जो है ये वो वाला सूर है जिसमें खड़े हो जाएंगे दोबारा, ये वो आखिरी सूर की बात है। और सूर के बारे में तो ये आता है, अल्लाहु अकबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं कैसे आराम से बैठ जाऊं, मैं कैसे चैन में रह सकता हूं कि सूर फूंकने वाले फरिश्ते ने सूर को मुंह में लिया हुआ है, मुंह में लिया हुआ है, और उसने गर्दन झुका के ना अपना कान लगाया हुआ है अल्लाह के हुक्म की तरफ कि किस वक्त अल्लाह का हुक्म आ जाए और वो फूंक दे। यानी ऐसा नहीं कि अल्लाह का हुक्म आएगा फिर वो जाएगा, फिर जाके सूर पकड़ेगा, फिर उसको लेके मुंह पे लगाएगा, तो उसमें भी तो थोड़ा टाइम लगेगा ना। नहीं, वो इतना अलर्ट है, इतना रेडी है कि उसने सूर को मुंह में पकड़ा हुआ और जस्ट वो वेट कर रहा है कि कौन आए और वो फूंक दे। अब आप देखें कि कितनी जल्दी फूंक दिया जाएगा, यानी जरा भी डिले नहीं है, वो कितना करीब है ये कि अल्लाह के हुक्म कि आते ही खत्म हो जाएगा सब कुछ। तो फरमाए मैं कैसे चैन से बैठ जाऊं, अल्लाह हू अकबर। और हमें फिक्र नहीं है कि देखो कितनी करीब है ये सब कुछ, कितनी करीब है कयामत, इतनी जल्दी आ जाएगी क्या? नाशुरुल मुजरिमीना यौमा इज़िन ज़ुरका, और हम जमा कर देंगे इकट्ठा। हशर करने का मतलब होता है जमा करना, इकट्ठा करना मुजरिमों को उस दिन। जुरका, नीले, नीली आंखें से भी मुराद हो सकता है एक तफसीर में ये है, और नीली आंखें वो नहीं है जिन्हें हम बड़ी खूबसूरत समझते हैं। अच्छा उस दिन तो बड़ी खूबसूरत हो जाएंगी आंखें, नहीं वो वाली नीली नहीं है, ये वो वाला नीलापन है जिसको आप कहते हैं ना कि जब, यानी जब खून जम जाता है या किसी चोट की वजह से इस तरह होता है। तो आप देखते हैं वो नील पड़ जाते हैं, जिसको हम नील ही कहते हैं, नील कहते हैं ना, नील पड़ गया, तो वो डार्क ब्लूइश सा और ब्लैकिश सा जो एक होता है वो कलर। और ये क्यों होगा? लोगों के चेहरों का रंग भी हो सकता है, उनकी आंखों का रंग भी हो सकता है, क्योंकि आंखें जो है वो ऊपर रोल अप हो जाएंगी। और अरब कहा करते थे, जब किसको बहुत खौफ में होता था ना, बहुत ज्यादा परेशानी के अंदर, तो फिर उसके लिए ये कहा करते थे। और हम भी कहते हैं, इवन हम भी अपने उर्दू में बोलते हैं ना, कि वो तो डर के मारे नीली पड़ गई, वो तो परेशानी की वजह से नीली पड़ गई। अब वो नीली, वैसे भी इंसान का चेहरा ऐसा हो जाता है किसी ट्रेजेडी या इसकी वजह से, लेकिन ये हम एक मुहावरतन भी बोलते हैं, जब वो सख्त खौफ की बात या इतनी परेशानी की बात होती है, तो उनकी हालत ये होगी कि उनके रंग ही बदल जाएंगे, नीले पड़ जाएंगे वो लोग, और वो सारे मुजरिमों को अल्लाह ताला इकट्ठा कर देगा। फिर वो क्या करेंगे, या तखाफतून बैनहुम, फिर वो चुपके चुपके आपस में बात करेंगे, क्या कहेंगे, ये लबिस्तुम इल्ला अशरा, हम नहीं ठहरे मगर, तुम नहीं ठहरे मगर अशरा, मगर 10। 10 क्या, दिन, महीने, साल, ये कहाँ पे नहीं ठहरे, दुनिया में, यानी हम नहीं ठहरे मगर इतना थोड़ा सा अरसा, 10 दिन। लेकिन बाद में हमें अगली आयत से पता चलता है कि वो दिन की बात कर रहे हैं, ये वहां पे यौम की बात आई, तो वो 10 दिन कहते हैं। हम इतना थोड़ी देर रहे हैं दुनिया के अंदर, नहनु आलमु बिमा यकूलून, अल्लाह ताला फरमाता है हमें पता है वो उस वक्त जो कहेंगे। कोई हो सकता है ना आज दुनिया में कहे कि ऐसे कैसे हो सकता है वो ये कहे, अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह को ज्यादा पता है वो उस दिन क्या बातें कर रहे होंगे। इज यकूलू, जब कहेगा कौन, अमसलुहुम तरीकतन, वो जो उनके अंदर मिसाली तरीके वाला था, यानी वो जो बड़ा कल्चर्ड था, वो जो बड़ा एजुकेटेड समझदार जिसको आप कहेंगे, पहले भी आया था ना कि उनके वो अपने तरीके के ऊपर, अपने मिसाली तरीके के ऊपर बड़ा फखर करते थे, तो ये वो बंदा है जो बड़ा मिसाली तरीका रखने वाला था, बहुत उनके अंदर होशियार और बहुत उनके अंदर सोफिस्टिकेटेड जिसको कहते हैं, एग्जाम्पलरी उसका किरदार था, वो बड़ा कल्चर्ड था। तो वो कहेगा लबिस्तुम इल्ला यौमा, और तुम तो बिल्कुल पागलपने की बात कर रहे हो, क्या बात करते हो, वो 10 दिन रहे थे, हम कहाँ 10 दिन रहे, हम तो सिर्फ एक दिन ही रहे थे। अब देखिए वही जो मैं आपको पहले बात कह रही थी कि इंसान को कितनी जल्दी समझ आ जाएगी, कितनी जल्दी समझ आ जाएगी कि ये दुनिया कितनी ही मुख्तसर थी, जो आज लग रही है ना इतनी लंबी कि हम उसकी प्लानिंग करते नहीं थकते, है ना, वो घड़ी 2 घड़ी की दुनिया लगेगी। और आज हमें किसी को कह दें कि ये तो घड़ी 2 घड़ी की, ये तो एक दिन लगनी, हमने कहाँ यकीन करना है, लेकिन उसी दिन जाके उस दिन सब लोग ये कह रहे होंगे कि ये तो कुछ भी नहीं था, एक एक दिन की बात थी सिर्फ। और उस सोचें, इस एक दिन को गुजारने के लिए हम कितनी अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, कितने उसके हुक्म तोड़ते हैं, कितना हम परेशान रहते हैं, कितने हमने मसलों को, दुनिया के मसलों को पहाड़ के बराबर बना लिया होता है, कितनी हम फिक्रों में यहाँ की मुब्तला रहते हैं, हम यहाँ के लिए इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं सिर्फ एक दिन गुजारने के लिए, यहाँ सिर्फ एक दिन गुजारने के लिए। और वो जो हमेशा की जिंदगी है इसके मुकाबले में, उसके लिए ना वैसी फिक्रें हैं, चलो फिक्र होगी भी, वैसी नहीं है जैसी यहाँ की है। जैसे यहाँ पे जॉब चले जाने का डर होता है ना, उससे ज्यादा फिक्र नहीं है मुझे आखिरत की। जैसे यहाँ से अपने बच्चे को कुछ हो जाने का होता है ना डर, उससे ज्यादा फिक्र नहीं है मुझे आखिरत की। हालांकि ये दुनिया है जो इल्ला यौमा, अगर एक दिन, हम नहीं ठहरे मगर एक दिन, क्योंकि ये बड़ा समझदार है ना, तो ये कह रहे हैं एक दिन तो ठहरे थे, तुम कहाँ 10 दिन की बातें कर रहे हो, 10 दिन तो बहुत लंबे होते, हम कहाँ 10 दिन ठहरे थे। तो ये जब अब वहां पे हशर में जमा हुए, तो ये दुनिया की जिंदगी बस पलक झपकना ही नजर आएगी, और इस पलक झपकने तक की जिंदगी को गुजारना हमारे लिए अल्लाह की फरमाबरदारी में आज कितना मुश्किल लगता है, कितना मुश्किल लगता है कि हम इतनी सी देर के लिए भी अल्लाह के हुक्मों पे नहीं चल पाते। इसीलिए तो जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे ना, तो अल्लाह ताला उनसे यही फरमाएगा कि तुम कितने अच्छे रहे ना, कि इतनी सी देर में तुमने अल्लाह की फरमाबरदारी कर ली, इतनी छोटा सा तो टाइम था, इसमें अल्लाह की फरमाबरदारी करके जन्नत में दाखिल होगा, और जहन्नमियों को कहेगा तुम कितने बदबخت रहे कि इतनी सी देर में तुमने अल्लाह की ऐसी नाफरमानी की कि जहन्नम का सौदा कर ली, इतनी सी देर में नहीं हमसे सही रहा जाता। मैं सोच रही थी आज सुबह ही, मैंने कहा हम ना अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चों को कहते हैं कि देखो तुम पढ़ो या तुम नेक बनो, या हम ऐसी कितनी उनको नसीहतें करते, नहीं पढ़ोगे तो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर देखो तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाएगा, तुम बुरे लोगों के सोबतों में होगे तो तुम्हारा फ्यूचर खराब होगा, तुम्हारा ये हो जाएगा नुकसान, वो हो जाएगा, और वो हमारी बात सुनते ही नहीं। तो हम इतना कुढ़ते हैं, इतना अपने आप को हलकान करते हैं, हर माँ बाप का यही हाल है। लेकिन अल्लाह ताला हमें इतनी दफा कुरान में बताता है, कितना खोल खोल के वाजे करता है, हमारा कोई हाल इन बच्चों से मुख्तलिफ नहीं है, हम भी उसी तरह हैं जैसे वो ढीठ होते हैं, और हम सोचते ना क्यों नहीं ये सुनते, इनको क्यों नहीं समझ आती, ये क्यों नहीं मेरी बात को मान जाते, कितनी दफा कह चुकी हूं, हमें भी तो कितनी दफा कहा जाता है, हमें भी तो कितना समझाया जाता है, हम भी तो अपनी डगर नहीं छोड़ते, क्या शिकायत करें इन बच्चों से, हम सब समझ के भी कैसे ना समझे बने बैठे, सब जान के भी अनजान बने बैठे, कि आज हमारे लिए इस दुनिया की सारी खुशियां ही खुशियां हैं, इसकी कामयाबी हमें कामयाबी लगती है, इसका पैसा ही हमें सब कुछ लगता है, इसका फेलियर ही हमें सबसे बड़ा फेलियर लगता है, इसमें यहीं पे लोगों की नजरों में जच जाना हमें सबसे अच्छा लगता है, यहीं पे लोगों की तारीफें हमें सबसे बड़ी चीज लगती है, बड़ी कामयाबी लगती है, यहीं की परेशानियां हमें हलकान रखती हैं, यहीं की फिक्रें हमें रातों की नींदें उड़ाए रखती हैं, सब कुछ हमारा यहीं से जुड़ा हुआ है, आखिरत की तो फिक्र भी कभी आती है और कई कई दिन तो आती भी नहीं, यहीं के शौक हैं जो हमें बेचैन रखते हैं, जन्नत के शौक तो कभी कभी लगते हैं जब कभी बात सुन ले, जहन्नुम में जाने की फिक्र कि वहां पे चली ना जाऊं, कहीं उस अजाब में ना मुब्तला हो जाऊं, ये तो कभी कभी आती है, और अल्लाह ताला तो साफ बता रहा है, एक है रहमान और रहीम रब, एक शफीक रब, एक मेहरबान रब, जैसे एक माँ तड़पती है अपने बच्चे के लिए और वो उसको चाहती है कि ये नाकामी से बच जाए, मेरी बात को सुन ले, मेरी नसीहत को सुन ले, अल्लाह ताला हमसे माँ से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, वो भी चाहता है हम नाकामी से बच जाए, वो हमें वो फ्यूचर की बात जाके आज दिखाता है, देखो ऐसे कहेंगे लोग, देखो बच जाओ इस नाकामी से, देखो समझ लो इस दुनिया की हकीकत को, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली पानी में डुबो के, समंदर के पानी में डुबो के फरमाया कि अगर कोई उस उंगली को समंदर के पानी में डुबो के निकाले तो जितना पानी इस उंगली पे लग जाएगा, ये दुनिया है और ये समंदर आखरत है, कोई मुकाबला है, कोई मुकाबला है इतने से पानी का, इतने बड़े समंदर के आगे, फिर भी हमें समझ नहीं आती, फरमा दिया ये जिक्र है, ये रिमाइंडर है, ये तुम्हें बार बार समझाएगा, लेकिन अफला यतदब्बरून अल-कुरान, क्यों नहीं तुम कुरान पे तुम तदब्बर नहीं करते, अम अला कुलूबिन अक्फालुहा, या इनके दिलों पे ताले लग गए हैं क्या कि उनको बात ही समझ नहीं आती, बाकी ताले ही तो लग गए, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हमें इस कुरान से नसीहत लेने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला इस सबक को याद रखने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए और हमारी नस्लों को भी हिदायत अता फरमाए और हिदायत के रास्ते पे चलाए, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, तिलावत सुनिए।
وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوماً